चंद्रिका लेक्चर नंबर 10। ओ नमः सिद्धेभ्य, ओ नमः सिद्धेभ्य, ओ नमः सिद्धेभ्य, ओ शुद्धात्मने नमः।
नमो हरिहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आयनियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणं, सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवरणेमि चन्द्रमकलंकं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परूणं वोच्छं। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड भाषा टीका का यह हिंदी अनुवाद की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 62 पर आ गए। 62 देखो, 61वें पृष्ठ से हमारी पांचवी गाथा चल रही है। वहां ये बात बताई थी, हमने पहले देखी थी, ये जो 20 प्ररूपणाएं है जीव के संबंध में विशेष व्याख्यान, उसके दो मुख्य भेद बताए थे। 20 को दो में गर्भित किया था, जय बेन याद है कौन से दो? गुणस्थान और दूसरा मार्गणा स्थान, स्थान कहना। अकेले मार्गणा कहते तो 14 है, मार्गणा स्थानों में अन्य 5 प्ररूपणाएं गर्भित है। 14 मार्गणा और 6 प्ररूपणा मिलकर 20 प्ररूपणा होती है। गुणस्थान को अलग निकाला और अन्य जो 5 प्ररूपणा है उसको मार्गणा स्थान में गर्भित करके गुणस्थान और मार्गणा स्थान, ये मुख्य दो भेद बताए। तो जीव समास और पर्याप्ति है, वो इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा में गर्भित है, वो बात यहाँ चल रही थी। क्योंकि जीव समास में भी वही जीवों के विभाजन किए हैं, केंद्रीय द्विंद्रिय आदि, इंद्रिय मार्गणा में वही बात आती है, पर्याप्ति आदि में भी वही बात आती है फिर से दोबारा। अब यहाँ 62 पेज पर, 62 पृष्ठ पर, 62 पृष्ठ पर बात चल रही है अपनी,
चौथी,
हाँ चौथी लाइन। पुनश्च, यानी इसमें यहाँ तक हम रुके थे कि इसलिए जीव समास और पर्याप्ति इंद्रिय काय मार्गणा में गर्भित जानने, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। पुनश्च उच्छ्वास, वचन बल, मन बल, प्राणों का, प्राणों की बात चल रही है, श्वासोच्छ्वास प्राण, वचन बल प्राण और मन बल प्राण अपने कारणभूत। उच्छ्वास भाषा मन पर्याप्ति जहाँ जहाँ अंतर्भूत हुए उसमें अंतर्भूतपना न्याय ही है, जैसे हमने देखा था ये पर्याप्तियों को इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा में गर्भित किया। तो जहाँ उच्छ्वास पर्याप्ति को लिया वहीं पर उच्छ्वास प्राण को भी लेना, जहाँ भाषा पर्याप्ति को गर्भित किया वहीं पर वचन बल प्राण को लेना, जहाँ मन पर्याप्ति को गर्भित किया वहां पर मन बल प्राण लिया, जैसे जीव समास में हम संगी पंचेंद्रिय कहते हैं, तो संगी पंचेंद्रियों को वो विशिष्ट पर्याप्तियां भी होगी, वे प्राण भी होंगे, इसलिए ये भी वहां ही इंद्रिय काय मार्गणा में गर्भित हुए। पुनश्च योग मार्गणा में काय बल प्राण गर्भित है, क्योंकि जीव के प्रदेशों का चंचल होने रूप लक्षण का धारी काय योग रूप जो कार्य, क्या कहते हैं योग किसको कहना, जीव के प्रदेशों का चंचल होना। तो ये जो काय योग रूप जो कार्य है उसमें उस काय का बल रूप लक्षण का धारी काय बल प्राण स्वरूप जो कारण कार्य क्या हो रहा है, योग, और उसमें काय बल प्राण कारण है, उसके अपने स्वरूप का सामान्य विशेष द्वारा किया हुआ एकत्व विशेष का सद्भाव है। यानी कार्य और कारण
इनका एकत्व करके योग मार्गणा में ही ये प्राण काय बल प्राण को गर्भित किया। काय बल प्राण ये कारण है और काय योग
कार्य
ये कार्य है, तो कारण और कार्य को एक साथ गर्भित कर दिया।
देखो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं काय योग यानी क्या, तो काय योग की परिभाषा इस तरह से समझाते हैं कि उसका लक्षण क्या है, तो चंचल रूप होना। तो चंचल किसका, चंचलपना किसका, तो कह रहे हैं जीव के प्रदेशों का जो चंचल रूप होना है, ऐसा जिसका लक्षण है उसको काय रूप, काय योग रूप कहेंगे। और वह क्या है, वह तो कार्य है, तो कारण क्या है उसमें, तो कहते हैं बल रूप, काय का बल रूप लक्षण का धारी काय बल नामक जो प्राण है वो कारण है। ये और आगे क्या कहते हैं, अपने स्वरूप का सामान्य विशेष द्वारा, इसमें एक सामान्य एक विशेष है, इन दोनों का एकत्व यानी विशेष का सद्भाव है, इन दोनों को एकत्व करके ये बात बताई जा रही है, आगे चल के वही बात आने वाली है।
अन्य अन्य मार्गणाओं में अन्य अन्य प्ररूपणा कैसे गर्भित होती है इसकी यहाँ चर्चा चल रही है। पुनश्च ज्ञान मार्गणा में इंद्रिय प्राण गर्भित है, क्योंकि इंद्रिय रूप मति श्रुत आवरण के क्षोभशम से, मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण के आवरण के क्षोभशम से प्रकट जो लब्धि रूप इंद्रिय, इंद्रिय किसको कहते हैं, हम कहते हैं भावेंद्रिय, लब्धि उपयोगो भावेंद्रिय, तो लब्धि रूप इंद्रिय ये मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण के क्षोभशम को ही लब्धि कहते हैं। उनके ज्ञान सहित तादात्म्य से किया हुआ एकत्व का सद्भाव है, यानी ज्ञान में हम मति ज्ञान श्रुत ज्ञान आदि कहते हैं वह भी क्षोभशम ज्ञान है और उसी को यहाँ लब्धि रूप में ले लिया। पुनश्च गति मार्गणा में आयु प्राण गर्भित है, क्योंकि गति और आयु के परस्पर अजहद वृत्ति है, यानी उनमें एकत्व पाया जाता है गति में और आयु में। गति आयु बिना नहीं है और आयु गति बिना नहीं,
अजहद वृत्ति का अर्थ बताएं।
हाँ, परस्पर अजहद वृत्ति ने परस्पर उनमें एकत्व है, जहाँ एक है वहाँ दूसरे है ही, गति के बिना आयु नहीं, आयु के बिना गति नहीं, सो इस लक्षण से एकत्व होता है। इस तरह हमने अनेक प्ररूपणाओं को अनेक मार्गणाओं में देखा, और भी जो अन्य प्ररूपणाएं हैं वो आगे अभी और कह रहे हैं आगे की गाथा के द्वारा। 6 नंबर की गाथा अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। माया लोहे रदिपुवा हारम को हमान गम्य भयम वेदे में हुण सन्ना लोहम परिगहे सन्ना माया लोभयोः रतिपूर्वकम् आहारम् क्रोधमानकयोर्भयम् वेदे मैथुन संज्ञा लोभे परिग्रहे संज्ञा। माया कषाय और लोभ कषाय में आहार संज्ञा गर्भित है। संज्ञा 4 है, याद है ना? हाँ, आहार भय मैथुन और परिग्रह, क्योंकि आहार की वांछा रतिकर्म का उदय पहले होने पर होती है, पहले रतिकर्म का उदय होता है और फिर आहार की वांछा होती है। पुनश्च रतिकर्म है सो माया लोभ कषाय राग का कारण है, वहां अंतर्भूत है, राग में वो रतिकर्म की बात आती है। पुनश्च क्रोध कषाय और मान कषाय में भय संज्ञा गर्भित है, क्योंकि भय के कारणों में द्वेष का कारणपना है। देखो, हम क्रोध मान माया लोभ इनको राग द्वेष में डिवाइड करना है, भेद करना है, उसका कैसे करते हैं? हाँ, माया और लोभ राग में है, क्रोध और मान द्वेष रूप है, यही बात यहाँ बता रहे हैं। तो भय भी है वो द्वेष रूप है।
नौ नौकषाय को भी बताना।
हाँ, नौ नौकषाय को बताना है आपको। क्रोध मान माया लोभ को तो हमने देखा, अब नौ नौ कषाय। हाँ,
ये जो नौ कषाय है उनमें राग रूप कौन से है और द्वेष रूप कौन से है उसको हमें देखना है।
नौ नौ कषाय तो पता है ना, हाँ, हास्य रति और तीन वेद राग में है, और हाँ, शोक अरति भय जुगुप्सा, और क्या रह गया? हाँ, चार हो गए। हाँ, पहले पांच और ये चार, नौ हो गए। यही बात यहाँ बता रहे हैं कि भय के कारणों में द्वेष का कारण बना है, इसलिए द्वेष रूप जो क्रोध मान कषाय उनके कार्य कारण अपेक्षा एकत्व होता है, इसलिए भय संज्ञा में वो क्रोध और मान गर्भित है। पुनश्च वेद मार्गणा में मैथुन संज्ञा अंतर्भूत है, ये जो संज्ञा प्ररूपणा है तो उसमें आहार संज्ञा है, उसको हमने कषाय मार्गणा में लिया, भय संज्ञा को भी कषाय मार्गणा में अंतर्भूत किया, अब यहाँ वेद मार्गणा में मैथुन संज्ञा को लिया, क्योंकि काम के तीव्रपने के वशीभूत पने से किया हुआ स्त्री पुरुष युगल रूप जो अभिलाषा सहित संभोग रूप मैथुन का कार्य, वह वेद के उदय से उत्पन्न पुरुषादि की अभिलाषा रूप कार्य है, यानी वेद का उदय में ही मैथुन संज्ञा है, इसलिए उसका कार्य कारणपण्य से उनका एकत्व बताया। इस तरह कार्य कारण भाव से एकत्व का सद्भाव है। पुनश्च लोभ में परिग्रह संज्ञा अंतर्भूत है, हम देखते हैं ना दसवें गुणस्थान तक परिग्रह संज्ञा है, क्योंकि वहां लोभ का उदय है, क्योंकि लोभ कषाय होते ही ममत्व भाव रूप परिग्रह की अभिलाषा होती है, इसलिए यहाँ कार्य कारण अपेक्षा एकत्व है, ऐसा हे भव्य तू जान। क्षुधा में लिया था, हाँ, और उदीर्णा ली थी, परंतु आहार वो तो इच्छा होती है ना, आहार लेने की इच्छा होती है, तो सामने पदार्थों को देखते हैं तो उनके प्रति कुछ रुचि हो जाती है, राग है ना, रति कर्म का उदय हो जाता है वहां। देखो एक ही के लिए बहुत सारे कारण है विद्यमान, वहां भूख लगने के लिए वो कारण बताया, और ये ग्रहण करने की इच्छा होना उसमें रति कर्म बताया, दोनों ले सकते हैं उसमें।
यहाँ पर हमें मार्गणों में वो उसको विभाजन करना है, इसलिए यहाँ पर वो बात चलेगी।
अब और जो कोई गर्भित करने हैं वो भी और बता रहे आगे की गाथा के द्वारा, सात नंबर की गाथा।
नाणे मग्गम इदं चणे मग्गे अणगारो वजोगो लीनोति निदिद्धं साकारो उपयोगो ज्ञान मार्गणायां दर्शन मार्गणायां अनाकारो उपयोगो लीन इति जिनैः निर्दिष्टम्।
देखो कहीं भी जिने ही निर्दिष्टम, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, ज्ञान मार्गणा में साकार उपयोग गर्भित है। देखो उपयोग के दो ही भेद किए हैं, साकार और अनाकार, तो ज्ञान मार्गणा दर्शन मार्गणा में दोनों ही आ जाते हैं, तो ज्ञान मार्गणा में साकार उपयोग गर्भित है, ज्ञान को ही साकार कहते हैं और दर्शन को निराकार अनाकार कहेंगे, क्योंकि ज्ञानावरण वीर्यांतराय के क्षोभशम से उत्पन्न ज्ञाता के परिणमन का निकटपना होते ही विशेष ग्रहण रूप लक्षण का धारी जो ज्ञान, उसकी उत्पत्ति होती है। ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, तो यहाँ तो क्षोभशम ज्ञानियों की बात चल रही है, तो ज्ञानावरण, अकेले ज्ञानावरण कभी नहीं कहते, ज्ञानावरण के साथ हमेशा वीर्यांतराय को लेते हैं, तो ज्ञानावरण और वीर्यांतराय इन दोनों के क्षोभशम से जो ज्ञाता का वहां परिणमन होता है, वहां कार्य क्या हुआ, विशेष ग्रहण रूप, ज्ञान को कहेंगे विशेष ग्रहण रूप और दर्शन को कहेंगे सामान्य ग्रहण रूप, तो इस ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसलिए। हाँ,
ये जब आपने पढ़ा तब हमारे अरविंद भाई के माथे पे सल आई कि ये क्या बात चल रही है। मैं बताता हूँ, यहाँ जो ज्ञानावरण है ये भी एक कर्म की जाति है, और वीर्यांतराय, अंतराय कर्म में पांच है ना, उसमें से वीर्यांतराय। अब ये वीर्यांतराय क्या है, कोई भी कार्य में विघ्न डालने वाला वीर्य में, तो वीर्यांतराय कहेंगे। अभी हमें ज्ञान होना है मान लो, और एकदम अचानक लाइट चली जाए तो वो विघ्न हो गया, ख्याल में है, अंतराय कर्म आया, तो उसके साथ ज्ञान भी आपका पढ़ने से रह गया। तो यहाँ क्या कहते हैं, ज्ञानावरण और वीर्यांतराय का क्षोपक्षम, यानी जो जितना आवरण ओछा उतना ज्ञान बढ़ेगा, उसके साथ में अंतराय कर्म भी वर्क कर रहा है। इतनी बात,
यानी यहाँ जीव का वीर्य लेना, हाँ। जैसे ज्ञानावरण के क्षोपक्षम में जीव का ज्ञान का परिणमन चल रहा है, ज्ञान का उघाड़ है, वैसे वीर्यांतराय के क्षोपक्षम में जीव के वीर्य का उघाड़ है। तो ज्ञान और वीर्य दोनों गुण एक साथ कार्य कर रहे हैं।
हम दूसरी भाषा में कहते हैं दे बोथ गो हैंड इन हैंड। जब तेरवा गुण स्थान आता है तो अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य एक साथ प्रकट होता है। ये यही बात यहाँ पर बताना चाहिए, और नहीं समझ में आवे तो पूछना हो, क्योंकि मैं सबको थोड़ी देख सकता हूँ किसको समझा और किसको नहीं, क्योंकि यहाँ क्या भाषा थोड़ी सी ऐसी, वो
अभी बार बार कर्मों की भी बात आएगी, पूछ
नहीं
लेना।
नहीं, भाषा थोड़ी सी ऐसी जिसको हम कहेंगे गांभीर्य पूर्व है, गरिष्ठ जब भाषा कहते हैं, जैसा सादा भोजन और बहुत पंच पकवान वाला भोजन और गरिष्ठ भोजन होता है, हजम करने में तकलीफ होती है, वैसा ये बात है। जो समझने में हमें थोड़ी दिक्कत होगी, पूछना, और आपके पूछने से हमारा भी ज्ञान में उघाड़ होता है,
पूछने से तो और क्लैरिटी बढ़ती है। और यहाँ बड़े बड़े वाक्य है, क्योंकि ओरिजिनल है संस्कृत, संस्कृत में से भाषा टीका की, तो वहाँ भी संस्कृत के तो भाषांतर वहाँ भी हुआ था। भावार्थ भले उन्होंने अपनी ओर से भी बहुत सारी बातें डाली है यानी समझाने के लिए, फिर भी ओरिजिनल जो बड़े बड़े वाक्य होते वो तो रखे है। हाँ, यहाँ भी वही रखने पड़े, कितनी जगह तो उसके एक वाक्य के दो तीन वाक्य भी बनाए हैं मैंने, परंतु ये जो ओरिजिनल संस्कृत है तो उसमें तो इतने बड़े बड़े वाक्य होते, आपको शायद पता नहीं होगा, संस्कृत कोई लिटरेचर पढ़ा है, दो दो तीन तीन पेजेस से एक वाक्य चलता है।
भास नामक, हाँ। एक कवि हो के गए या लेखक हो के गए भास, उनको यहाँ चालू होते तो तीन चार पेज के बाद उनका वाक्य पूरा होता है। चलो,
पुनश्च दर्शन मार्गणा में अनाकार उपयोग गर्भित है, उपयोग प्ररूपणा है वो ज्ञान मार्गणा में और दर्शन मार्गणा में गर्भित है, ये बात यहाँ बता रहे हैं। क्योंकि अभी दर्शन की उत्पत्ति कैसी होते है वो बता रहे, दर्शनावरण वीर्यांतरा, इस यहाँ भी वीर्यांतराय दिया, तो ज्ञान और दर्शन ये जीव के गुण है, वीर्य भी जीव का गुण है, तो उनमें भी उघाड़ तीनों का है, तो उसके क्षोभशम से प्रकट हुआ पदार्थ का सामान्य ग्रहण रूप व्यापार, वहां लिखा था विशेष ग्रहण ज्ञान के लिए और दर्शन के लिए सामान्य ग्रहण, व्यापार होते ही पदार्थ का सामान्य ग्रहण रूप लक्षण का धारी जो दर्शन, दर्शन की परिभाषा क्या है, पदार्थों का सामान्य ग्रहण अवलोकन, ग्रहण कहो अवलोकन कहो प्रतिभास कहो एक ही बात है, उसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए कार्य कारण भाव बनता है। इस तरह ये गर्भित भाव पूर्वोक्त रीति से जिन जो अरिहंतादिक उनके द्वारा निर्दिष्ट अर्थात कहे हैं, यानी अरिहंत भगवान ने कार्य कारण भाव कैसा है, तो यहाँ हमने देखे थे कि ये कर्मों का क्षोभशम ये कारण है, और जो ज्ञान दर्शन जो है वो कार्य है, तो इसलिए उसको उसी में गर्भित कर दिया। हाँ, लब्धि यूरोप इंद्रिय ने लब्धि उपयोगो भावेन्द्रियम जो कहते हैं, क्षोभशम ज्ञान को ही लब्धि कहते हैं,
और जो सम्यक तो प्राप्ति में जो शोभशम लब्धि है वो ये लब्धि नहीं है, क्योंकि एकेंद्रिय के ज्ञान के उघाड़ को भी क्षोभशम लब्धि कहेंगे। जितना ज्ञान का उघाड़ है उसी को लब्धि कहेंगे, उसी को क्षोभशम लब्धि भी कहेंगे, परंतु ये सम्यक्त्व के पूर्व होने वाली क्षोभशम लब्धि वो ये नहीं है, क्योंकि एक ही शब्द के अनेक अर्थ अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं। आपने तो सुना है जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझू ते, सीमा जी लिखे गए ना, अपने ही लिए लिखा है। हाँ। तो कहते हैं अरिहंतादिक जो जिनेन्द्र है, जिनेन्द्र भगवान है, गणधर है, मुनि है, उन्होंने जो बताया है उसी को यहाँ लिख रहे, अपनी रुचि से रचे हुए नहीं है। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं मैंने अपने रुचि से ये भाव लिखे नहीं है, ये तो भगवान की वाणी से चले आ रहे हैं। इस तरह जीव समास आदि के मार्गणा स्थान में गर्भित भाव के समर्थन द्वारा जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा और उपयोग इनको मार्गणा स्थानों में गर्भित कर दिया। गुणस्थान और मार्गणा स्थान ये दो प्ररूपणा प्रतिपादित की है। पुनश्च भेद विवक्षा से यानी उन्हीं के भेद करने पर 20 प्ररूपणा पूर्व में कही उन्हीं को कहते हैं, पहले 20 प्ररूपणाएं बता चुके उसी को कहते हैं। पहले गाथा में भणिताहा पद कहा था, उससे 20 प्ररूपणा परमागम में प्रसिद्ध है, उनके प्रकाशन द्वारा उनके विशेष कथन में स्वाधीनपना जो अपनी इच्छा के अनुसार कहना उसे छोड़ा है। क्या कहते हैं, पहले भी भणिताहा वह शब्द आया था, निकालो चार नंबर की गाथा में, संस्कृत में देखा विंशतिस्तु प्ररूपणा भणिताहा, यानी ये 20 प्ररूपणाएं कही है। कही है का अर्थ क्या है, परमागम में ये प्रसिद्ध है, बताई हुई है, यानी उसमें अपनी इच्छा के अनुसार कुछ कहने का निषेध कर दिया है कि मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कह रहा हूँ, परमागम में जो प्रसिद्ध है वे ही बातें बता रहा हूँ। आगे उन 20 प्ररूपणाओं में पहले कही जो गुणस्थान प्ररूपणा, ये 20 प्ररूपणाओं के नाम किसको याद है, पहली प्ररूपणा कौन सी इतना तो याद है, गुणस्थान। हाँ, आपको सभी प्ररूपणा याद है, और किसको याद है, नहीं हाँ बोलो प्रेरणा बेन, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, हाँ उपयोग, वो 20वीं है। हाँ हाँ हाँ, अभी बीच में 14 मार्गणा लेना। हाँ बोलो, गति इंद्रिय काय, योग वेद कषाय, ज्ञान संयम दर्शन, लेशा भव्य सम्यक्त्व, संज्ञा नहीं संगी, संगी और आहार। संज्ञा तो प्ररूपणा है, संज्ञा में तो आहार भय मैथुन परिग्रह आते हैं, और संगी में संगी असंगी ऐसे दो भेद आते हैं, ख्याल में आए ना। ये 20 ये तो बार बार सुनने वाले हो, मैं नहीं कहूंगी तो भी याद होने वाले, आप याद करके आए, अच्छा है, तो क्या याद था ही,
याद
पहले से
तो
याद था ही
है। हाँ, और नहीं चाहो फिर भी याद होने वाला है,
अभी शिविर में हुआ था नहीं। हाँ। अभी शिविर में यही 20 प्ररूपणा हमने ली थी, तो आगे उन 20 प्ररूपणाओं में पहले कही
एक कागज पर लिखकर स्कूटर चलाना तो जरूर याद हो जाता है।
हाँ, कागज की ओर देख देख के चलाना। हाँ
आगे
जो गुणस्थान प्ररूपणा उसके प्रतिपादन के अर्थ, प्रथम गुणस्थान शब्द का निरुक्ति पूर्वक अर्थ कहते, ये निरुक्ति शब्द बारंबार आने वाला है, निरुक्ति का अर्थ वो शब्द कैसे तैयार हुआ, वो शब्द की फोड़ करके बताएंगे, गुणस्थान ये शब्द कैसे तैयार हुआ उसको बताएंगे यहाँ पर। जे हिंदुलक्ष्य जन्ते उदयादिषु संभवे हि भावे हिम,
जीवाते गुण सन्ना निर्दिष्टा सौवदसी
यहिस्तु लक्षन्ते उदयादिषु संभवैः भावैः जीवास्ते गुण संज्ञा निर्दिष्टा सर्वदर्शिभिः। सर्वदर्शियों ने बताया, सर्वज्ञ ने कहो या सर्वदर्शी ने कहो, एक ही बात है, यानी भगवान ने ये बातें बताई है। ठीक है, ये गुणस्थान की निरुक्ति कैसे हुई उसको बता रहे हैं। मोहनीय आदि कर्मों का उदय उपशम क्षय क्षोभशम परिणाम रूप जो अवस्था विशेष, अवस्था विशेष यानी पर्याय, विशिष्ट पर्याय, वो विशिष्ट पर्यायों में कौन से, मोहनी को यहाँ मुख्य लिया है। मोहनी कर्म के या तो उदय है, उपशम है, क्षय है या क्षोभशम है।
यहाँ पर मोहनी आदि लिखा है, तो आदि में कौन कौन से कर्म को लेना है जय बेन आप बताएंगे?
हाँ,
आपने कहा चार घाती कर्म, और कुछ बताना है किसी को? सुशीला बेन,
हाँ, वो मोहनीय में आ गए, दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय दोनों मोहनीय में आ गए।
हाँ चलो आगे, आपका कहना बराबर है,
ठीक है, क्योंकि जो केवल ज्ञान होता है तेरहवें चौदहवें गुणस्थान में चार घाती कर्मों का क्षय वहाँ है, तो उनके होते हुए यानी कर्मों की विशिष्ट अवस्थाएं होते हुए उत्पन्न हुए जो भाव, कर्मों की विशिष्ट अवस्था और यहाँ जीव में विशिष्ट जीव के परिणाम भाव, ये तो जीव के गुणस्थान है ना, जीव के भावों में होते हैं, परंतु निमित्तपना वहाँ कर्मों का होता है। कर्म का या तो उदय होगा, उपशम होगा, जो कोई उसकी अवस्थाएं होगी, तो उसके निमित्त से उत्पन्न हुए जीव के भाव यानी परिणाम यानी जीव की गुणों की जो कोई अवस्थाएं होगी, अर्थात जीव के मिथ्यात्वादिक परिणाम, उनसे लक्षन्ते अर्थात लक्षित किए जाते हैं, देखे जाते हैं, लांछित किए जाते हैं जीव, यानी उन भावों के अनुसार, जैसे जीव के भाव है उसके अनुसार हम जीवों का लक्षण कहते हैं। जैसे जिन जीवों को मिथ्या तो परिणाम है उनको मिथ्या तो गुणस्थान कहेंगे, वे जीव के परिणाम गुणस्थान संज्ञा के धारक है। जीव के परिणाम है जीवों की पर्याय, आगे चलकर गुणस्थान की परिभाषा हम देखेंगे तो ये बात और ख्याल में आ गई। ऐसा सर्वदर्शी जो सर्वज्ञ देव उनके द्वारा निर्दिष्ट अर्थात कथित है, इस गुण शब्द की निरुक्ति की प्रधानता युक्त सूत्र द्वारा मिथ्यात्वादिक यानी मिथ्या तो गुणस्थान से लेकर अयोगी केवलीपना पर्यंत चौदहवें गुणस्थान तक ये जीव के परिणाम विशेष वे ही गुणस्थान है ऐसा प्रतिपादन किया है। जब हम गुणस्थान कहेंगे ये कोई गुणों के स्थान नहीं है, स्थान का अर्थ होता है भेद, ये जीव के पर्यायों के भेद है, जीवों के भावों के भेद है, उसको भी गुण कहने में आता है। तो कहीं गुण शब्द गुण के लिए भी आएगा, कहीं पर्याय के भी लिए, तो गुणस्थान में जीवों के पर्याय विशेष है, विशिष्ट पर्याय है, उनके भेदों को यहाँ गुणस्थान कहा है। वहां अभी उदय किसको कहना, उदयिक भाव किसको कहना, उसकी बात करेंगे। अपनी स्थिति के नाश के वश से जब कर्म का बंध होता है तो विशिष्ट उसमें स्थिति पड़ती है, उतने ड्यूरेशन के लिए उतने काल के लिए कर्म परमाणु बंधे हुए अवस्था में पाए जाते हैं, जब स्थिति पूरी होती है तो खिर जाते हैं, यही बात बता रहे। स्थिति का नाश यानी स्थिति की पूर्णता, स्थिति पूरी हुई गई तो स्थिति के नाश के वश से उदय रूप निषेक में, निषेक यानी कर्म परमाणुओं का गठा लॉट जो एक साथ उदय में आते हैं उनको कहते हैं निषेक,
तो उदय रूप निषेक में जो उदय का वर्तमान समय में जो उदय हो रहा है, उदय ने उप स्थिति पूर्ण होने पर खिर जाना, उसको कहेंगे उदय होना। उदय रूप निषेक में गले, गले यानी अभी जो खिरने वाले, खिर रहे ऐसे जो कारमाण स्कंद अनेक कर्म परमाणु है उसको कारमाण स्कंद का, उनका फल देने रूप जो परिणमन वह उदय है। क्या कहना चाहते हैं? कर्म बंधने के बाद सत्ता में पड़ा रहता है, उसकी अपनी अपनी स्थिति पूरी होने पर वो उदय आता है यानी वो खिर जाते हैं, और जब खिर जाते हैं तभी उसका फल मिलता है। तो फल देकर खिर जाना उसको उदय कहते हैं। सत्ता में पड़े हैं तब उस कर्म का कोई फल नहीं है। हम देखे तो मुनिराज है, ध्यान में लीन है, उपसर्ग हो रहा है। अभी पारसनाथ मुनि की बात दे, तो सत्ता में तो तीर्थंकर प्रकृति पड़ी थी, अनेक पुण्य प्रकृतियां पड़ी थी, परंतु उसका उदय जब होगा तब उसका फल होगा। ऐसी कितनी प्रकृतियां अंदर पड़ी है तो उसका फल उदय रूप होता है। आज एक भाई आए थे, पूछ रहे थे, हम तो इतना अच्छा कार्य करते हैं, इतने पुण्य रूप परिणाम होते, फिर भी हमारी कंडीशन कैसी है? और ये अन्यमति जो है वो तो मांस भक्षण करते हैं, मद्य पीते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं होटल वगैरह निकाल कर, और फिर बहुत पैसे कमाते हैं, उनका यश भी बहुत है। तो ये कर्म के ही कारण होता होगा, कर्म के ही कारण होता होगा। हाँ नहीं, कर्म से तो है ही नहीं, उनके तो पूर्व, तो कहते हैं उनके पूर्व पुण्य का इतना संक्रमण नहीं होता है, पाप रूप नहीं होता है, ऐसे बिहेव कर रहे। तो मैंने बोला उनका पुण्य कहाँ, पुण्य तो आपका है कि आपको सच्चे देव गुरु शास्त्र को समागम मिला है, वाणी सुनने को मिली है, सच्चे पुण्यवान तो आप है। वो पैसे के प्रति देखकर, उनके यश के प्रति देखकर क्यों आप लुभाते हो? उसको पुण्य भी कहने लायक नहीं है। यश कीर्ति का उदय तो एक इंद्रियों के भी होता है। ये हीरा माणक आदि जो एक इंद्रिय है उनके भी यश कीर्ति का उदय रहता है, तो उससे क्या? और कुछ थोड़े पैसे मिले, थोड़े संयोग अच्छे मिले, तो उससे क्या है? ये कभी नहीं मिलने वाली जिनवानी जो सुनने को मिल रही है, इतना अच्छा पुण्य का उदय और क्या हो सकता है?
लेकिन उसको कोई पुण्य मानता ही नहीं है ना?
हाँ,
पैसे में ही पुण्य का उदय मानते हैं।
हाँ,
और वो जो आई हुई व्यक्ति थी वो होगा अभी मेरे ख्याल से
34-35
वर्ष साल का। जब हम मंदिर में जाते थे वो एकदम ऐसा छोटा सा, मतलब आधी चड्डी में घूमने वाला
छोटा बच्चा था,
ऐसा लड़का था, कब तब से मिला नहीं, आज आया और कुछ पैसा देके गया। अभी उसके पुण्य का उदय है हमारे। नहीं, उनको पुण्य किसको कहना इस बात
का पता है ना कि हम क्या, हमें क्या मिल रहा है उसका, उसकी वैल्यू नहीं। जैसे मनुष्य बने तो मनुष्यपना कितना दुर्लभ है, हमने पढ़ा था। अब इसमें जिनवानी सुनने को मिलना, उसकी रुचि होना, ये उससे भी बहुत अत्यंत दुर्लभ बात है। तो ये दुर्लभ में पूर्व के कोई सातिशय पुण्य बिना ये बात नहीं बन सकती, क्योंकि हमने देखा ये उत्तरोत्तर सारे दुर्लभ बातें हैं। अब यहाँ उदय की बात चल रही थी अपनी, कि जो गुण के जो नहीं, हमने ऊपर पढ़े थे अपनी स्थिति के नाश के वश से, यानी जिसकी स्थिति पूरी हो गई है, ऐसे जो उदय रूप निषेक है, उदय रूप जो परमाणु है अभी, उनमें जो कारमान स्कंद गल रहे हैं, उनका जो फल देने रूप जो परिणमन होता है, कारमान वर्गणा की जो कर्म रूप वहां परिणमन हुआ था, अब वो कर्म अकर्म रूप होने जा रहे हैं। कर्म से जब अकर्म रूप होते हैं तो उसका जो यथा योग्य फल मिलता है, क्योंकि उसकी अपनी शक्ति है ना, ज्ञानावरण की, दर्शनावरण की, मोहनीय की अपनी अपनी शक्ति है। तो सत्ता में मोहनीय पड़ा है इसलिए कुछ भूल है, ये नहीं। उदय रूप जो मोहनीय कर्म है, मिथ्यात्व है, उसका तीव्र उदय है, मंद उदय है, उसका उपशम है, जो कुछ है वैसे यहाँ वो निमित्त है। कर्म कुछ कराता नहीं है, ये बात मुख्य समझ लेना। जीव के परिणाम उसके अपने स्वतंत्रता से अपने से होते हैं, उस समय सामने कर्मों का वैसा निमित्त पाया जाता है। एक साथ एक समय में दोनों बातें होती है, तो हम कहेंगे उसका निमित्त से जीव के भाव हुए, कहने में भले आवे, परंतु हमने पहले एक रूल नक्की किया है ना कि निमित्त से उपादान में कुछ नहीं होता है, परंतु निमित्त होता है, बस इतनी बात, उसका प्रेजेंस है। और कर्णान योग के ग्रंथों में उसका ज्ञान कराया जाता है। ऐसा नहीं कि कर्णान योग में निमित्त से कार्य होता है और द्रव्यान योग में उपादान से कार्य होता है, ऐसा नहीं।
देखो यहाँ पर एक विशेष बात है, कर्म का उदय हुआ ऐसा कह रहे हैं, वहां तो एक बात नक्की होगी कि उसकी स्थिति पूरी हो गई, यानी कर्म की निर्जरा और कर्म का फल देना और कर्म का उदय तीनों एक साथ हो रहे हैं, ख्याल में है ना। यानी हम कहें कि कर्म निर्जरित हो गए, उसी समय वो फल भी दे रहे हैं।
ये जो निर्जरा है ना, ये सामान्य हर समय चल रही है, ये मोक्ष मार्ग वाली संवर निर्जरा वाली निर्जरा नहीं है। तो इस निर्जरा को उदय कह रहे हैं हम, तो इसका फल मिल रहा है। कोई भी कर्म बनता है तो फल दिए बिना खिरता ही नहीं है, भले वो स्वरूप से खिरे पर रूप से खिरे तो हम कहेंगे वो तो अलग बातें होती है। यहाँ तो उदय किसको कहना, जिसकी स्थिति पूरी हुई है, ऐसे कर्म परमा, ये कर्म जो है वो फल देकर नष्ट होते हैं, खिर जाते हैं, अकर्म रूप होते हैं, उसको कहेंगे उदय। उसके होने पर यानी उदय के होने पर, कर्म का उदय होने पर जो भाव होते हैं, कर्म का उदय कर्म में, जीव के भाव जीव में, दोनों अपने अपने से होते हैं, फिर भी उन भावों को क्या कहेंगे, वे औदयिक भाव है। उदय और औदयिक भाव, जैसे हमने कहा था क्षोभशम और क्षायोपशमिक भाव, जहां उपशम होगा वहां कहेंगे औपशमिक भाव, जहां क्षय होगा कर्मों का वहां कहेंगे क्षायिक भाव, और पारिणामिक भाव में कर्मों का क्या होता है, हाँ, कर्मों की अपेक्षा ही नहीं है। हाँ। आगे पुनश्च गुण के प्रतिपक्षी जो कर्म, अपने अपने प्रतिपक्षी कर्मों का अपने अपने गुण पर जो उसमें निमित्त पना बनेगा।
ऐसा आपको कोई मालूम है किसी गुण का कोई प्रतिपक्षी कर्म, डॉक्टर साहब आप बताएंगे?
बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा।
ज्ञान गुण है और ज्ञानावरण उसका प्रतिपक्षी कर्म है।
और आगे
और भी बोलो।
दर्शनावरण। दर्शनावरण। लक्ष्मी जी आप
कर्म, वीर्य गुण और वीर्यांतराय कर्म।
और जयाबेन देखो आपको कहना है श्रद्धा गुण और दर्शन मोहनी कर्म, उसका प्रतिपक्ष आगे क्यों, चारित्र गुण,
चारित्र गुण में, चारित्र गुण में चारित्र मोहनी।
अब आप बताएंगे। देखो ऐसा हम विचार करेंगे ना तो यहाँ जो कह रहे हैं पुनश्च गुण के प्रतिपक्षी जो कर्म, ये बात ख्याल में आते है तो आगे का जो उनका कहना है वो भी हमारे दिमाग में उतरेगा।
ये जो प्रतिपक्ष आप आयु में लगा रही है वो प्रतिपक्ष तो घाती कर्मों में खास होगा, और आयु वगैरह में वो तो सूक्ष्मत्व वगैरह गुण होते हैं ना, अव्यवहार, उसके लगाने की जरूरत नहीं, हम घाती कर्मों में विशेषता उसको लगाएंगे। यहाँ क्या कहते हैं, गुण के प्रतिपक्षी जो कर्म, उनके उदय का अभाव। क्या कहा यहाँ पर, पहले वहां तो उदय की बात की थी, अब यहाँ उदय का अभाव, यानी कर्म तो सत्ता में है परंतु उदय रूप नहीं है, वह उपशम है। उसके होने पर जो हो वह औपशमिक भाव है। तो ऐसे कोई मालूम है कि कर्म का, कर्म है सत्ता में, उदय में नहीं आ रहे और औपशमिक भाव हो रहा है, औपशमिक भाव कोई मालूम है आपको? औपशमिक भाव कितने हैं? दो। हाँ कौन से? बहुत अच्छा। हाँ औपशमिक सम्यक
चारित्र कहना है
और औपशमिक चारित्र।
देखो सीधा प्रश्न पूछे तो फटाफट फटाफट बोलते हैं, जरा उल्टा बोल के पूछा सबके चेहरे ऊपर हो जाते हैं। ऐसा
ये सब आपके मालूम है आप सबको ये बातें। हाँ ये ऐसा नहीं, अभी हम कोई नया विषय में घुसे ही नहीं हो तो यही बात चल रही जो हमने पहले सुना है। तो उसके होने पर जो औपशमिक भाव है, जैसे शरीर से शारीरिक शब्द तैयार होता है वैसे उपशम से औपशमिक, उदय से औदयिक। पुनश्च प्रतिकर्म प्रतिपक्षी कर्मों का पुनः न उपजे ऐसा नाश होना। क्या कहते हैं? पहले तो दब जाना, उदय में न आना, इतना ही कहा था। अब यह ऐसा नाश होना कि फिर दोबारा उपजे ही नहीं, वह क्षय, उसको क्षय कहा। उसके होने पर जो हो वह क्षायिक भाव है। ऐसे क्षायिक भाव कोई मालूम है आपको? प्रतिभात आई, हाँ, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक चारित्र, क्षायिक सम्यक्त्व, हाँ, क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये नौ क्षायिक भाव है।
कितने प्रतिभात आई है,
सबकी प्रतिभा एकदम उछल कर आ रही है। ये तो क्षायिक भाव है। अब क्षायोपशमिक की बात कर रहे हैं। पुनश्च प्रतिपक्षी कर्मों का उदय विद्यमान होने पर भी, क्या कहते हैं? है तो प्रतिपक्षी, उदय भी विद्यमान है, फिर भी जीव के गुण का अंश दिखाई देता है। जैसे मति ज्ञानावरण, ये ज्ञान का प्रतिपक्षी है, मति ज्ञान का प्रतिपक्षी है मति ज्ञानावरण कर्म, उसका उदय भी चल रहा है, फिर भी हमारा मति ज्ञान भी दिख रहा है, अंश दिख रहा है ना, उसको कहते हैं क्षोभशम। उसके होने पर जो हो, कर्मों में होता है क्षोभशम और जो जीव में होता है उसको कहेंगे क्षोभशमिक भाव। कितने होते हैं? 18। मैं पूछूंगी नहीं कौन से, हाँ, याद है? हाँ बोलो। 4 ज्ञान, 3 कुज्ञान यानी अज्ञान, हाँ हाँ, 3 दर्शन, हाँ, 5 दान, लाभ, भोग, उपभोग वगैरह, और संयम, असंयम, हाँ, क्षोभशम सम्यक्त्व, क्षोभशम चारित्र कहो, सराग चारित्र कहो, हाँ वो बता दिया। इस तरह ये 18 भाव। पुनश्च उदयादि की अपेक्षा से रहित, उदयादि यानी उदय, उपशम, क्षोभशम और क्षय, तो कर्म की किसी भी अवस्था की अपेक्षा से रहित ऐसा जो परिणाम है, उसके होने पर जो हो वह पारिणामिक भाव है। इस तरह औदयिकादि 5 भावों का सामान्य अर्थ प्रतिपादन करके विस्तार से आगे उन भावों के महाअधिकार में प्रतिपादन करेंगे। जब उनकी बात आएगी तब उसकी और विस्तार से चर्चा होगी।
देखो, क्षोभशम की परिभाषा जो है वो इतनी डिफिकल्ट है, पर उन्होंने कितने जिसको आसान तरीके से समझाया क्षोभशम किसे कहना।
मूल गाथा का अर्थ तो एक पैराग्राफ में टीका बता दी थी, ये जो बाद में बताए वो पंडित टोडरमल जी ने अपनी ओर से लिखा है, इन्हें सरल करके बताया, क्योंकि ये शब्द बारंबार आने वाले हैं। मूल पुस्तक में तो ऐसा कहेंगे उसका उदय है, उसका उपशम है, उसका क्षोभशम है, परंतु उसको किसको क्या कहना वो बात उन्होंने यहाँ बता दी। आगे 2 गाथाओं द्वारा उन गुणस्थानों के नाम कहते हैं। हाँ, अब ये तो सबको याद है ही, फिर भी ये कोशिश करना है कि जो हम यहाँ पढ़ते हैं तो फिर दोबारा जरा उसको पढ़े, याद करे, जो कुछ करे, कि गुणस्थानों के भी नाम याद रहे तो अच्छा होगा। मिच्छो शासन मिच्छो अविरद सम्मो यदेश विरदोय विरदापमत्त इदरो अपोव अनियट्टि सुहमोय उवसंत खीण मोहो सजोग केवलि जिनो अजोगीय 14 जीव समासा कमेण सिद्धायणादौवा मिथ्यात्वं शासनः मिश्र अविरत सम्यक्त्वं च देश विरतश्च विरतः प्रमत्त इतर अपूर्व अनिवृत्ति सूक्ष्मश्च उपशान्त क्षीण मोह सयोग केवलि जिन अयोगी च 14 जीव समासा क्रमेण सिद्धाश्च ज्ञातव्या। यहाँ जीव समास कहा है गुणस्थानों को, तो कहीं ऐसा शब्द आने पर डरना मत, क्योंकि हम 14 जीव समास एकेंद्रीय द्विंद्रीय आदि को कहते हैं, और यहाँ गुणस्थानों को भी जीव समास कह दिया है।
टीका पढ़ते हैं, मिथ्या शासन, मिथ्या लिख रहे ना, मिथ्या अर्थात अतत्व गोचर है दृष्टि अर्थात श्रद्धा, जिसके दृष्टि यानी श्रद्धा वो कैसी है, तत्वार श्रद्धानंद वाली नहीं है, उल्टी है, तो अतत्व श्रद्धान वाली है। तो अतत्व गोचर है दृष्टि अर्थात श्रद्धा जिसकी, वह मिथ्या दृष्टि है।
अतत्व गोचर का अर्थ जरा बताएं।
हाँ बता दो
आप
हा? बता दो। अतत्व गोचर, गोचर यानी जानने में आवे ऐसे। हाँ अतत्व यानी जो तत्व नहीं, प्रयोजनभूत तत्व कौन से है पता है ना कि नहीं? हाँ जीवादि सात तत्व जो है, जो प्रयोजनभूत तत्व है, जिनके सही जानने पर श्रद्धा करने से ही आगे मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो सकती है। तो इनके जो अतत्व में श्रद्धान है, तत्वों में श्रद्धान नहीं है। जैसे जीवादि प्रयोजनभूत सात तत्व है, उनका जैसा स्वरूप भगवान ने कहा है वैसा ही उसको जानना मानना और उसकी श्रद्धा करना, उसमें भी जैसा हेय गेय उपादेय का जो श्रद्धान है वैसे उसको सही रूप से स्वीकार करना, वो तत्व गोचर कहेंगे। और ये अतत्व गोचर है उल्टी श्रद्धा, उल्टी मान्यता। आपको कुछ और कहना है?
नहीं, आप जरा एक्सप्लेन करेंगे तो, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं थोड़े से संस्कृत मिश्रित है, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा, मतलब जल्दी ख्याल में आवे।
हाँ, नाम्युत्तर पदश्च, ऐसे व्याकरण सूत्र द्वारा, ये व्याकरण का एक नियम बता रहे हैं, दृष्टि पद का, पद यानी शब्द, लोप करके मिच्छो ऐसा कहा है, मिथ्या दृष्टि के बदले केवल मिच्छो ऐसा कह दिया, मिच्छो यानी मिथ्या, तो मिथ्या दृष्टि के बदले अकेला मिथ्या कह दिया, आगे का जो पद है दृष्टि वाला उसका लोप कर दिया, यह भेद आगे भी जानना। पुनश्च आसादन जो विराधना, उस सहित वर्ते वह सासाधना, स प्लस आसाधना यानी विराधना सहित, सासाधना है सम्यक दृष्टि जिसकी, वह सासाधन सम्यक दृष्टि है यानी विराधक सम्यक दृष्टि कहो, या सम्यक दृष्टि की जिसके विराधना हो गई ऐसा जीव, उसको सासाधन सम्यक दृष्टि कहते। सम्यक दृष्टि था, अभी अभी विराधना हो गई है, ऐसे जीव को सासाधन सम्यक दृष्टि कहेंगे, यानी भ्रष्ट सम्यक दृष्टि कहेंगे, गिर गया अभी वो, अभी वो सम्यक दृष्टि नहीं है, उसकी सम्यक दृष्टि नष्ट हो गई है, नहीं वो तो सम्यक जो थी दृष्टि वो नहीं रही, अभी उसके भंग हो गया, उसका उससे छूट गया है, अब वो मिथ्यात्व में जा रहा है। अथवा आसादन अर्थात सम्यक्त्व का विराधन, उस सहित जो वर्तमान यानी उस सहित जो विद्यमान, वह सासाधन। पुनश्च सासाधन और वह सम्यक दृष्टि, वह सासाधन सम्यक दृष्टि है, यह पूर्व में हुआ था सम्यक्त्व, उस न्याय से यह सम्यक दृष्टि पना जानना, यानी ये कोई सम्यक दृष्टि नहीं है, उन सम्यक दर्शन से अभी छूट कर आया है, पूर्व में सम्यक दृष्टि था इसलिए यह सासाधन सम्यक दृष्टि ये नाम है।
इसके साथ साथ वह मिथ्या दृष्टि भी नहीं हुआ है, सम्यक्त्व से छूट गया है लेकिन अभी ट्रांजिट में है, पूरा मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ है, इसलिए उसको सासाधन सम्यक दृष्टि कहा।
पुनश्च सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का जो मिश्र भाव, वह मिश्र है जिसको सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं, सम्यक्त्व तो छूट गया है, अभी मिथ्यात्व में जो जिसको कहते हैं व्यक्त तत्व श्रद्धा नहीं हुआ है परंतु अव्यक्त अभी है वहां पर, तो इसलिए कोई जुदी जात का परिणाम है, इसको मिश्र भाव कहेंगे। पुनश्च सम्यक अर्थात समीचीन है दृष्टि यानी यथार्थ है दृष्टि जिसकी, अर्थात तत्वार श्रद्धान जिसका, ये जिसका तत्वार श्रद्धान, जिसकी दृष्टि सम्यक हुई है, समीचीन हुई है, यथार्थ हुई है, वह सम्यक दृष्टि है। और वही अविरत अर्थात असंयमी
वह अविरत सम्य दृष्टि है। चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्य दृष्टि। तत्वार श्रद्धांत तो सम्यक हुआ है परंतु अभी असंयमी है, इसलिए असंयत उसको कहेंगे या अविरत सम्यक दृष्टि कहेंगे। पुनश्च देशतः अर्थात एक देश से, यानी पार्शली कुछ अंश में, तो एक देश से विरत अर्थात संयमी, यानी पूरा संयमी नहीं हुआ है, कुछ अंश में संयमी है, वह देश विरत है, संयता संयत है, ऐसा अर्थ जानना, उसी को संयता संयत कहेंगे, उसी को देश विरत कहेंगे। यहां जो विरत पद है वह ऊपर के सर्व गुणस्थान वर्तियों के संयमीपना को बतलाता है। क्या कहते हैं? अभी तक हमने जो नाम देखे गुणस्थानों के, कौन कहना चाहता है? बोलो सुशीला बेन। मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक, तो अब देश विरत। अभी यहां से जो विरत शब्द आया है उसको हम आदि दीपक कहेंगे। देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, ऊपर के सभी विरत ही है, परंतु इसको देश विरत कहा, परंतु आगे के तो सारे संपूर्ण विरत हैं। इसलिए यहां कहते हैं ये जो शब्द आया है यहां पर, ऊपर के सर्व, ऊपर के यानी छठे सातवें वगैरह, ऊपर के सभी गुणस्थान वर्तियों के संयमीपना को बतलाता है। ये तो देश संयमी है और ऊपर के सभी छठे से लेकर चौदहवें तक संयमी है। पुनश्च प्रमाद्यति अर्थात प्रमाद करे वह प्रमत्त है। पुनश्च इतर अर्थात प्रमाद न करे वह अप्रमत्त है। ऊपर आए थे ना प्रमत्त और इतर, इतर है ने अप्रमत्त। देखो ये प्रमत्त जो शब्द है, अभी दो शब्द आए प्रमत्त विरत, तो विरत तो आगे चलेगा विरत विरत, और प्रमत्त है ये पहले गुणस्थान से लेकर ये अंतिम गुणस्थान है जहां तक प्रमाद है, यानी प्रमत्त शब्द अंत्य दीपक है। इसके पहले सभी गुणस्थानों में प्रमाद है, ये प्रमत्त में से आखिर का गुणस्थान है और सकल संयमियों में से पहला गुणस्थान है, इसलिए प्रमत्त विरत शब्द आया है। अप्रमत्त की बात पढ़ी हमने। पुनश्च अपूर्व है करण अर्थात परिणाम, जिसके वह अपूर्व करण है। अपूर्व पूर्व में कभी नहीं हुए है ऐसे परिणाम है, ये जो श्रेणी के परिणाम है ऐसे परिणाम पूर्व में कभी नहीं हुए थे सातवें गुणस्थान तक, तो उसको अपूर्व कहे। पुनश्च निवृत्ति अर्थात परिणामों में विशेष नहीं पाया जाता। अनंत जो जीव जो कभी अनिवृत्तिकरण में आते हैं गुणस्थान में, उनके सभी के परिणाम समान पाए जाते हैं, इसलिए निवृत्ति ने उनके परिणामों में भेद नहीं है, असमानता नहीं है, इसलिए उसका नाम ही अनिवृत्ति कहा। निवृत्त रूप है करण अर्थात परिणाम, जिसके वह अनिवृत्तिकरण है। पुनश्च सूक्ष्म है सांप्राय अर्थात कषाय, जिसके सांप्राय का ही अर्थ होता है कषाय, तो जिसके जो परिणाम है सूक्ष्म है, कषाय कैसे सूक्ष्म है, उसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय। कौन से कषाय हो गए यहां सूक्ष्म? अकेला लोभ ही है, वो भी सूक्ष्म है। पुनश्च उपशांत हुआ है मोह, जिसका वह उपशांत मोह है, उपशमित हुआ है, उदय में नहीं आ रहा है। कौन से मोह की बात चल रही है यहाँ पर? चारित्र मोह की, क्योंकि दर्शन मोह तो पहले से उपशमित है या क्षय हो चुका है जो यथा योग्य है, यहाँ चारित्र मोह भी पूर्ण रीति से उपशमित हुआ है, उसका नाम है उपशांत मोह, ग्यारहवा गुणस्थान। उपशांत कषाय भी कहते हैं इसी गुणस्थान को, उपशांत मोह भी कहते हैं। पुनश्च क्षीण हुआ है मोह, जिसका वह क्षीण मोह, क्षीण यानी क्रुश हुआ है वो बात नहीं है, क्षीण यानी क्षय हो चुका है, यानी टोटल उसका नाश है, फिर दोबारा नहीं उपजे ऐसा लिखा था ना अभी, वह क्षीण मोह है, ये बारहवा गुणस्थान। पुनश्च घाती कर्मों को जीत लिया वह जिन, पुनश्च केवल ज्ञान इसके है, इसलिए केवली वही केवली वही जिन वह केवली जिन। पुनश्च योग सहित वह सयोग वही केवली जिन, ऐसे सयोग केवली जिन। घाती कर्मों को जीत लिया इसलिए जिन भगवान कहा, जिनेन्द्र जिन कहा यहाँ पर, और केवल ज्ञानी है इसलिए केवली जिन, योग सहित है इसलिए सयोग केवली जिन। पुनश्च योग जिसके है वह योगी, योगी नहीं वह अयोगी। केवली जिन ऐसी अनुवृत्ति से अयोगी, अनुवृत्ति यानी कंटिन्यूटी। 13वें गुणस्थान में केवली जिन कहा है, अब यहाँ गाथा में तो केवल अयोगी इतना ही लिखा है ना, वही केवली जिन ऐसे अयोग केवली जिन है। ऐसे ये मिथ्या दृष्टि आदि अयोग केवली जिन पर्यंत 14 जीव समास अर्थात गुणस्थान जानने। अब ये 14 गुणस्थानों के नाम किसको याद नहीं है क्योंकि हाथ बहुत सारे उठे सबको याद है, अच्छा है। कौन बताना चाहते हैं? अरविंद भैया आप बताएंगे? हाँ बताइए। हाँ कोई बात नहीं, मिथ्यात्व सासाधन मिश्र, हाँ अविरत सम्यक्त्व, हाँ देशवीरत, देशवीरत कहना, आगे सम्य दृष्टि कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ के सारे सम्य दृष्टि है आगे। हाँ अप्रमत्त प्रमत्त 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 विरत विरत कहना, प्रमत्त विरत अप्रमत्त विरत, हाँ अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण, बहुत अच्छा। सूक्ष्म सांप्राय उपशांत मोह क्षीण मोह सयोग केवली अयोग्य, बहुत अच्छा याद है ना। बोलो वीरेश भाई बोलो। हाँ मिथ्यात्व, हाँ दूसरे का नाम, बहुत अच्छा सासादन मिश्र अविरत सम्यक्त्व, हाँ
देश,
हाँ देश विरत, हाँ फिर छठे गुणस्थान का नाम क्या है? प्रमत्त विरत, प्रमत्त विरत पहले प्रमत्त विरत लेना, बाद में अप्रमत्त विरत अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण। दसवा गुणस्थान, दसवा सूक्ष्म लोभ है ना, सूक्ष्म सांप्राय उपशांत मोह क्षीण मोह सयोग केवली अयोग्य, बहुत अच्छा। बाकी सबको याद है हा? तो कहते गुणस्थान की जीव समास ऐसी संज्ञा कैसे हुई, गुणस्थान को जीव समास क्यों कहा ये पूछ रहे हैं। वहां कहते हैं जीव है वे समस्यन्ते अर्थात संक्षेप रूप करते हैं जिनमें। ये समस्यन्ते कहीं शब्द सुना है? समास है ना, बहुत अच्छा। अष्टपहुर के मंगलाचरण अभी हम क्या वहां क्या लिखा है, हाँ जहां कम्मम समासेन, यानी यथाक्रम से मैं संक्षेप में कहूंगा, ये समासेन शब्द आया यहाँ पर। समस्यन्ते अर्थात संक्षेप रूप करते हैं जिनमें, वे जीव समास अथवा जीव हैं। वे सम्यक आसते येषु अर्थात भले प्रकार रहते हैं जिनमें, वे जीव समास। इस तरह यहाँ प्रकरण जो प्रस्ताव उस, यानी यहाँ गुणस्थान का प्रस्ताव प्रकरण चल रहा है, इसलिए जिसको हमने संक्षेप से किया ना, ये तो जीवों के भाव तो असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग हो गए, उनको ये 14 भावों में हमने या 14 गुणस्थानों में यहाँ उनके ग्रुप्स किए, संक्षेप किया, शॉर्ट कर दिया उनको, तो इसलिए यहाँ प्रकरण गुणस्थान का है, इसलिए यहाँ जीव समास कहने पर भी उसका अर्थ गुणस्थान होगा। उसके सामर्थ्य से गुणस्थान ही जीव समास शब्द द्वारा कहा है, क्योंकि ऐसा वचन है यादृशम प्रकरण तादृशो अर्थ, उसी को कहा जहां जहां जय जय योगे थे जिस प्रकरण में जो शब्द वहां आया है उसका वैसा अर्थ समझना। जैसा प्रकरण वैसा अर्थ। सो यहाँ गुणस्थान का प्रकरण है, इसलिए गुणस्थान अर्थ का ग्रहण किया है। पुनश्च ये कर्म सहित जीव जैसे लोक में है वैसे नष्ट हुए है सर्व कर्म जिनके, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी भी है ऐसा जानना। क्या कहते हैं, जैसे कर्म सहित जीव है तो उनका तो यहाँ वर्णन हो ही रहा है, कर्म रहित ऐसे सिद्ध भगवान भी है, उसकी बात हम कल करेंगे।
जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो।
अरविंद है।